तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, ऐसे अनमोल रतन भगवान ने गिनती के ही बनाए हैं। उनमें से एक बहुत कीमती रतन आदरणीय सिलू दीदी जी आज हमारे बीच पधारे हैं, आज हमारे बीच पधारे हैं। स्वागत है आपका, शुभ आगमन है आपका। जिस परिसर में आप पधारे वो परिसर भी आपका। आप मोस्ट सीनियर राजयोगा टीचर है। 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो पहली टीचर्स ट्रेनिंग भर्ती हुई थी, आप उस टीचर्स ट्रेनिंग के सौगात हैं। 1960 में आप ज्ञान में आए, साकार मम्मा बाबा की पालना में पलने वाले आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। उस समय आप लगभग 12 वर्ष के ही थे। पांडव भवन के भट्टियों के आप डायरेक्टर हैं, माउंट आबू के राजयोगा शिविर के आप डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, और 1993 में ब्रह्मा कुमारी की जो सेवाएं टीवी चैनल में शुरू हुई वो आपके माध्यम से ही शुरू हुआ। रेडियो, जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार, पीएम टीवी, अवेकनिंग आदि टीवी चैनल्स पर आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। हिंदी, इंग्लिश और सिंधी तीनों भाषाओं में आप बहुत अच्छे कुशल प्रवक्ता हैं। बेंगलोर, मुंबई, काठमांडू, हैदराबाद, अफ्रीका, मॉरिशियस आदि में आपने 1970 से 75 तक सेवाएं प्रदान की। 1976 में बाबा ने आपको माउंट आबू मुख्यालय पांडव भवन में ही सेवा में रखा और आपको ये टाइटल दिया कि आप हर की पौड़ी हैं। वैसे तो गंगा में स्नान का महत्व बहुत है, परंतु हर की पौड़ी का जो स्नान है ना, इसका एक विशेष महत्व होता है। तो बाप दादा ने आपको कहा, बच्ची आप हर की पौड़ी हो और देश विदेश से सब आत्माएं आएंगी और आपके पास ज्ञान रत्नों की डुबकी लगाएंगी। तो ऐसे अनमोल रत्न हैं आप। आपकी वाणी में है एक गजब की मधुरता, आपकी वाणी में है एक गजब की मधुरता, अनेक आत्माओं के जीवन को बदलने की क्षमता, अनेक आत्माओं के जीवन को बदलने की क्षमता स्वयं बाप दादा ने आपको वरदान दिया है। आपके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का निवास होता है। तो ऐसे दीदी जी का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और दीदी जी, आज हमें डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो हमें बताएंगे। जो भी भाई बहने नीचे बैठ सकते हैं तो वो सामने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो पीछे पीछे बैठे हैं भाई बहने वो भी सब जितना नजदीक सामने आएंगे उतनी आपकी एकाग्रता अच्छी होगी और क्लास का फायदा आप ज्यादा ले सकेंगे। आदरणीय दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई बहने, सर्व मधुबन निवासी, सबकी ओर से तथा हमारी ओर से आप मधुबन तपोभूमि में आए हो तो आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, आत्माओं का ये सच्चा घर जहाँ आकर विश्राम करते हैं, तो बाबा मधुबन को विश्राम पुरी भी कहते हैं। बाबा कहते हैं, आओ बच्चे, आओ अपने पिता के घर में विश्राम प्राप्त करो। और हमारा विश्राम किस में है? तपस्या में है ना। बाबा हमें वो मेहनत नहीं सिखाते जिसमें बहुत शारीरिक परिश्रम करना हो, लेकिन मानसिक व्यायाम सिखाते हैं। मन से कैसे बाबा के पास चले जाओ, फिर कर्म योगी बन के कर्म भी करो, वो एक्सरसाइज सिखाते हैं। अभी अभी देह से न्यारे हो जाओ, परमधाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन चले जाओ, पांच स्वरूपों को स्मृति में लाओ, फिर कर्म करो। ये सच्चा कर्म योग का पाठ हम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हैं। तो आप सभी ये सब डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी में आए हो, और जैसे ही आपको यह बैज मिला एक विजय माला के रूप में कि ये आपको गले में लगा कर रखना है, तो उस घड़ी से मानो आपको स्टैंप लग गए कि अभी आपकी तपस्या शुरू। तो इस योग भट्टी का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? 3 दिन जो आप योग तपस्या करेंगे उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? एक होता है लक्ष्य, लक्ष्य तो कई होते हैं पर उद्देश्य एक ही होता है। तो हमारी योग तपस्या का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्या बनने आए हैं? पहले जब आए भगवान बाबा के घर में आए, सेंटर पर आए, तो हम सब ने क्या कहा होगा, हमको योग सीखना है, इस लक्ष्य से आए ना। तो पहला क्या लक्ष्य था, हमको योग सीखना है। तो योग कैसे लगाना होता है वो आपको सिखाया गया और उसके लिए बाबा ने सहज शब्दों में सिखाया क्या है राजयोग। अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, सहज से सहज रास्ता, सहज से सहज हमारा लक्ष्य है। हर कदम पर उनकी याद में रहना, हर कर्म करते भी उनको याद करना, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ना, उनसे शक्ति प्राप्त करना, जिससे हमारा जीवन शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण कहलाने लगे कब, जब ब्रह्मा की मुख संतान बने, शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुना, मुरली के रूप में और धारण किया तो ब्राह्मण बन गए, मुख वंशावली ब्राह्मण। तो पहला लक्ष्य क्या था बाबा के पास आने से, शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना। फिर बताया गया ब्राह्मण की तो बहुत क्वालिफिकेशंस है, ब्राह्मण किसको कहा जाता है, मुख संतान तो है ही, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर कौन सी धारणा होनी चाहिए, फिर वो बताया गया, है ना। ब्राह्मण किसको कहेंगे जो ब्रह्मा से या ब्रह्म से शब्द शुरू होते हैं ना, वो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस है। तो पहला शब्द कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, मानो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ नया दिन। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अमृत वेला उठना और तपस्या करना, ये पहला हमारा लक्ष्य था ब्राह्मण जीवन में। फिर दूसरा लक्ष्य क्या था, ब्रह्म ज्ञान, वो भी ब्रह्मा से ही संबंधित है। जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं उसका श्रवण करना मुरली के द्वारा, अध्ययन करना, पहले श्रवण करना फिर अध्ययन करना फिर मनन करना चिंतन करना, ये हमारा दूसरा लक्ष्य बना। फिर और आगे ब्रह्म से क्या क्या कौन से शब्द तैलक रखते हैं, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज कहते हैं, तो शुद्ध आहार खाना, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ भोग लगाया हुआ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना, ये भी एक लक्ष्य था। फिर और ब्रह्मा से क्या ताल्लुक रखता है शब्द, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा आचरण, जो ब्रह्मा ने आचरण किया उसको फॉलो करना। शिव बाबा ने ब्रह्मा को और सब बच्चों को यही कहा, बच्चे अभी पवित्र बनो, योगी बनो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी ये अपना लिया। बाबा तो परिवार में रहते थे, लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ये अलौकिक परिवार ही उनका परिवार हो गया, लौकिक उसी में मिक्स हो गया। तो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन पवित्र योगी बनाया, और जो उस समय समर्पित हुए उन्होंने भी अपना जीवन पवित्र योगी बनाया, तो ब्राह्मण कहलाए। अब ब्राह्मण तो बन गए हैं, ये जो नियम बाबा ने दिए हैं वो उनका पालन तो कर रहे हैं, है ना, सभी कर रहे हैं ना, तभी तो यहाँ भट्टी में आए हो। फिर आगे लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने, कि हम बच्चों को जितने भी हमारे हिसाब किताब पाप कर्म है उन सबको दगद करना है, खत्म करना है, भस्म करना है। तो 63 जन्मों का हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, पाप कर्मों का भी बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो वो हमें इस संगम युगी छोटे से ब्राह्मण जीवन में चुकतू करना है। और कैसे करेंगे चुकतू? बाबा कहते उसके लिए मुझे याद करो, ये योग अग्नि हमारे पापों को भस्म करेगी, है ना। तो ये योग अग्नि बनानी है, ज्वालामुखी स्वरूप योग का करना है, तब हमारे पाप भस्म होंगे। तो केवल पाप भस्म ही नहीं करने हैं, लेकिन साथ में नए पाप भी नहीं करने हैं। एक तरफ पाप भस्म करें और दूसरे तरफ और पाप बनाते जाएं, तो पाप भस्म कहाँ होंगे, हाँ? कर्जा चुकतू करना आगे है किसी को, तो उतना कमाना पड़ेगा ना, पर कमाई से ज्यादा खर्चा है, तो फिर कर्जा चुकतू कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो किए हुए 63 जन्मों के पाप कर्म है वो भी चुकतू करने हैं, और आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है, ये भी लक्ष्य है। कैसे बनते हैं पाप कर्म, वो बाबा ने बताया, जो भी कर्म दे अभिमान के वश हो करके किसी भी विकार के वशीभूत करते हैं वो पाप कर्म बन जाता है। दुनिया की भाषा में उसको अपराध कहते हैं, बाबा उसको पाप कर्म कहते हैं। अपराध करते हैं ना, अपराध करते हैं तो जेल में जाते हैं, और वहां भी जो अपराध होते हैं वो विकारों के वश ही होते हैं, काम वासना के वश अपराध करते हैं, तो बलात्कार कहा जाता है। तो उनको तो पकड़ के जेल में तो डालते ही हैं, फिर बड़ी सजा देते, उम्र कैद या फांसी भी मिलती है। तो काम वासना का जो विकराल स्वरूप हो जाता है, जो कलयुग में हम देखते हैं बलात्कार के रूप में, कितनी बड़ी सजा उनको मिलती है। फिर क्रोध, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्रोध का विकराल स्वरूप क्या होता है, हत्या। गुस्से में आके मनुष्य क्या करते हैं, हत्या कर लेते हैं। तो ये क्रोध का विकराल स्वरूप है, तो उसकी भी तो बहुत बड़ी सजा है, किसका जीवन लेना अगर हुआ तो, जिसने जीवन दूसरे का लिया उसको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, उसको भी या तो फांसी मिलेगी या तो उम्र कैद मिलेगी। उम्र कैद भी जैसे जीवन का बदला जीवन हो गया, क्रोध का विकराल स्वरूप, ये सब पाप बनता है, अपराध कहा जाता है, लेकिन है तो पाप ना। फिर तीसरा पाप का कौन सा स्वरूप है, लोभ के वश। तो लोभ के वश कहाँ पहुंच जाते हैं, भ्रष्टाचार। इतना कमाना है कमाना है कमाना है, पेट के लिए नहीं कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, पेटियों के लिए कमाते हैं, कबड भरने के लिए कमाते हैं, दीवारों में छिपाने के लिए कमाते हैं, क्योंकि पेट को तो ज्यादा चाहिए नहीं। बाबा कहते दो रोटी टुकड़ है ना, लेकिन नहीं, नाम मान शान मर्तबा महिमा इसके पीछे लगे रहते हैं, और उसके लिए क्या कहते हैं, पैसा चाहिए। और जब पैसे धन की बात आती है तो कहा जाता, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब रुपया के आगे न बाप बड़ा है न भाई बड़ा है, रुपया ही सब कुछ है। तो लोभी नर तो बाबा कहते कंगाल है, क्योंकि लोभी नर लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, कितना भी उसको मिल जाए। तो लोभी नर तो कंगाल है, दुख पावत दुख देत दुख, खुद भी दुखी होता है दूसरों को भी दुखी देता है लोभी व्यक्ति। फिर मोह, मोह के वश तो इंसान एक के खातिर कितनों का नुकसान पहुंचा लेता है, क्योंकि एक में मोह है, कितने ही पाप करता रहता है, झूठ छल कपट निंदा चुगली बेईमानी ये सब पाप के खाते में जाता है, क्योंकि एक से मोह है। ना कहेंगे बच्चों के खातिर करता हूँ, घर के परिवार के लिए करता हूँ, लेकिन इतने गलत काम औरों को दुख देने का तो कितना बड़ा बोझ चढ़ाते अपने ऊपर। दुआएं तो कमाते ही नहीं है, बददुआएं कमाते हैं। फिर अहंकार की तो बात ही छोड़ो, कहते ना चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर ये लंबी खजूर। अहंकार के वश इंसान ऐसे कर्म कर लेता है, फिर पश्चाताप के आंसू बहाता है। अभिमान वश क्या क्या कर लेता है, जैसे उसके आगे कोई सब तुच्छ है, वही सबसे बड़ा है, और वही अहंकार मनुष्य को गिराता भी है। इसीलिए खजूर के पेड़ से भेंट करते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर। खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, उस पर भले खजूर लगे होते हैं, लेकिन कौन चढ़ेगा अपनी जान को खतरे में डालकर। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे फल लागे अति दूर। राहगीर को वो छाया भी नहीं दे सकता है, और फल इतना दूर है जो कोई चढ़ के उतार भी नहीं सकता है। तो किस काम का है, अहंकारी मनुष्य कोई काम का नहीं है, और जहां वो अहंकार है सारे विकार साथ साथ हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इनको जीतना है। तो ये एक और लक्ष्य हमको मिल जाता है। फिर और आगे क्या लक्ष्य मिलता है कि हमको डबल लाइट बनना है। तो आपकी भट्टी का यही नाम है डबल लाइट, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करेंगे तभी तो डबल लाइट बनेंगे। पापों का बोझा सिर से उतरेगा तभी तो डबल लाइट बनेंगे। तो डबल लाइट माना आत्मा लाइट ज्योति और आत्मा हल्की, क्योंकि विकर्मों का बोझा है, फिर व्यर्थ संकल्पों का भी बोझा है, फिर उससे भी मुक्त होना है तभी तो डबल लाइट बनेंगे। और फिर डबल लाइट बन करके संपन्न संपूर्ण बनना है। चंद्रमा डबल लाइट होता है ना, लाइट फुल लाइट होती है उसमें, पूर्ण चंद्रमा होता है पूर्णमासी की रात, तो गोल आकार भी पूरा होता है और प्रकाश भी उसमें पूर्ण होता है, जिसको बाबा कहते हैं संपन्न और संपूर्ण। प्रकाश में संपन्न भरपूर, एक चंद्रमा इनफ है सारे आकाश को रोशनी देने वाला। सितारे भी उस समय गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं, दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी इतनी होती है। तो संपन्न भी और संपूर्ण भी, संपूर्ण माना संपूर्ण गोलाकार, और दिन संपूर्ण गोलाकार नहीं होता है चंद्रमा, लेकिन 16 कला संपूर्ण, क्योंकि 16 दिन लगते हैं अमावस्या से गिनती करें पूनम तक 16 दिन, फिर पूनम से लेके फिर अमावस्या तक 16 दिन, तो 16 माना कंप्लीट, फुल एंड कंप्लीट, तो संपन्न माना फुल और कंप्लीट माना संपूर्ण, तो लाइट में भी संपन्न और फिर साथ में पवित्रता में भी संपूर्ण, तो संपन्न प्रकाश में गुणों में, इसलिए कहते हैं सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो कौन सी कलाएं? पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण और सब गुणों में संपन्न। परंतु उन गुणों का आधार क्या है? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, उसकी लक्ष्य मिलता है। रोज बाबा की मुरली में आता है बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान की बहुत आदत है, तो देही अभिमानी बनना है, खुद को देह से न्यारा अनुभव करना है। फिर दूसरा शब्द बाबा क्या कहते हैं? विदेही बनना है। जब लाइट बनने के लिए देही अभिमानी भी बनना पड़ेगा, फिर विदेही बनना है। और किसका मिसाल बाबा देते? राजा जनक का मिसाल। महलों में रहता था लेकिन उसको महल का मोह नहीं था। महलों में रहते हुए राजा होते हुए वो सन्यासी था। तो सब कुछ करना है, घर बार छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, अपने कर्तव्यों को पूरा निभाना है, लेकिन ये मेरा नहीं है, बाबा का है। तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा, मेरा को तेरा में बदल दो, म को त कर दो। गुरु नानक ने भी यही कहा ना, वो वजन कर रहा था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जब 13 शब्द आया तो 13, 13, 13, 13, 13 हो गया मैं तेरा, है ना, हो गया मैं तेरा। तो हम भी क्या कहेंगे? मेरा मेरा नहीं, क्या? तेरा। तो इसको कहेंगे विदेही अवस्था। और जब ये विदेही अवस्था होती है, न्यारा भी बनते हैं, प्यारा भी बनते हैं, केवल न्यारा नहीं प्यारा भी बनते हैं, क्योंकि छोड़ते तो कुछ नहीं ना। तो न्यारा और प्यारा जब बनते हैं तो फिर सहज अशरीरी बनते हैं। तो पहले देही अभिमानी, फिर विदेही, फिर अशरीरी। तो अशरीरी स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, जिसको बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा, डेड साइलेंस। आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर तो शांत हो जाता है ना, भाई इनका देह शांत हो गया, डेड साइलेंस। और आत्मा जब परम धाम में है, शरीर है ही नहीं, तो वो भी डेड साइलेंस ही है। जब गहरी नींद में है तो भी जैसे डेड साइलेंस है। तो बाबा कहते अशरीरी बन गए एकदम डेड साइलेंस, देह से न्यारी हो गई आत्मा। ये अभ्यास करना है। फिर अशरीरी बने, डबल लाइट बने, ये सब लक्ष्य है, ये सब हमें पार करना है। तब बाबा कहते हैं तुम संपन्न संपूर्ण बनोगे, बाप समान बनोगे, ब्रह्मा बाबा ऐसे ही बने। कैसे न्यारे प्यारे होते गए होते गए होते गए, दादियों को हमने देखा कैसे न्यारी प्यारी होती गई, और फिर शरीर त्यागना ये अंतमति सो गति, तो बाबा के पास कैसे वतन में पहुंची। फिर बाबा कहते हैं जब संपन्न संपूर्ण बने तो उसके बाद कौन सा लक्ष्य है, उसके बाद लक्ष्य है फरिश्ता बनना, एंजल बनना, हड्डी मांस का शरीर नहीं। पहले हड्डी मांस के शरीर में है लेकिन बाबा कहते अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण करके सबकी सेवा करना, यहाँ बैठे मनसा सेवा करना। तो मनसा सेवा जब हम औरों की करेंगे तो उन आत्माओं का भी संबंध बाबा से जुड़वा सकेंगे। तो डबल लाइट बनकर संपन्नता संपूर्णता को अनुभव कर फिर एकदम बाप समान बन फरिश्ता बनना है। अब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता के रूप में हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि घर में तो अभी कोई गया ही नहीं है। घर में कब जाएंगे, पहले शिव बाबा साजन बनेगा, हम सब सजनियां उनके पीछे पीछे जाएंगे, कोई साथ में जाएंगे, तो तब तक ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। फिर हाँ घर जाएंगे, ये भी एक लक्ष्य है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। हमारी बड़ी दीदी थी वो यही कहती थी, कोई इस कोई झंझट की बात उनके सामने लेके आता था ना, एकदम दीदी कहती थी छोड़ो अब घर जाना है, घर जाना है। तो घर जाना है ये सोचेंगे तो यहाँ फंसेंगे नहीं, छोड़ो छोड़ो तो छूटो, पकड़ के नहीं रखो, पकड़ के रखेंगे तो भारी हो जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं तो इस कुर्सी से सुख ले रहे हैं पर उठेंगे तो कुर्सी को थोड़ी साथ में उठाएंगे, उठा सकेंगे हा? उठेंगे तो बिल्कुल सीधा उठेंगे ना, कुर्सी तो यही रहेगी, तो हम कुर्सी को तो नहीं उठा सकेंगे। तो अगर उठ के जाना है तो कुर्सी को उठा कर तो नहीं ले जाएंगे, तो लाइट बनना पड़ेगा ना, ये तो यही छोड़ना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता बन के फिर घर उड़ना है, घर जाना है, अब घर जाना है। तो दीदी का ये मंत्र था अब घर जाना है। अभी भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो जब उनकी अर्थी को ले जाते तो यही गीत बजाते ना, कौन सा गीत, अब घर जाना है। तो देखो फिर घर जाएंगे, फिर बाबा कहते नई दुनिया में आना है, देवता बन करके, डबल ताजधारी बन करके, विश्व महाराजन बन करके। वैसे अगर कोई नए व्यक्ति आते हैं तो वो यही प्रश्न करते, ये सब बातें उनको पता नहीं है, लेकिन वो क्या प्रश्न करते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये नहीं कहते उद्देश्य कहते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। तो हम एक वाक्य में उनको क्या उद्देश्य बताते हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये एक वाक्य में उद्देश्य है। पर मनुष्य से देवता बनने तक हा? कितनी बातें हैं। तो ये जो बातें हैं ये लक्ष्य है, इसको माइलस्टोन्स कहते हैं। हाँ जैसे आपको आबू आना था, अभी अहमदाबाद से आए होंगे बाय रोड आए होंगे, तो बीच में कितने छोटे छोटे शहर आ गए, ऊंझा आया, सिद्धपुर आया, हाँ फिर पालनपुर आया, जो भी ये बीच में आए, तो ये लक्ष्य था भाई पूछेंगे पालनपुर आया, मेहसाना आया, तो वो आया भाई आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे। हाँ दिल्ली से आते हैं तो भी कितने स्टेशन होते हैं, भाई अभी इस स्टेशन तक पहुँचे, फिर आबू रोड आता है, बस पहुँच गए हाँ पहुँच गए। तो इसीलिए लक्ष्य तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, कहाँ तक जाना है। इसके लिए वो गीत भी गाते, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना, तो ठिकाना हमारा तो घर ही है, परम धाम वो घर है, लेकिन फिर ये मंजिल है, सुखधाम में जाना है, चक्र लगाना है, ये हमारा स्वदर्शन चक्र चलाना है। तो ये सब बाबा हमको लक्ष्य बताते हैं, उनका अनुभव करना है, पांच स्वरूपों का अनुभव करना है, हम इसी चक्र से आए हैं। और अभी ब्राह्मण से फरिश्ता फिर देवता बनना है, तो इतना हमारा लंबा सफर है, परंतु बाबा कहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में जीवन मुक्ति राजा जनक को कैसे मिली, उसकी कहानी बताते ना कि राजा जनक ने कहा कि मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति कोई दे, एक सेकंड में। तो कई विद्वान उनके सामने आए, विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्या होती है वो कैसे बताएंगे। फिर क्या दिखाते हैं, वो तो थक गया, क्योंकि कोई एक सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं दे सकता था, न बता सकता था। तो फिर किसने उनको रास्ता बताया, अष्टावक्र ने। और जब अष्टावक्र सभा में आया तो बड़ा बेढंगा शरीर था उसका, आठ कुब थे, अष्टावक्र, हाँ आठ कुब थे। तो जो सभा में बैठे थे वो सब हंसने लगे कि ये ऐसा कुरूप व्यक्ति, ये क्या राजा को ज्ञान देगा। तो उस समय अष्टावक्र ने क्या कहा, ये सब चमार बैठे हैं, चमार बैठे हैं। क्यों कहा, क्योंकि वो चमड़ी को देख रहे हैं। चमार लोग चप्पल बनाते हैं ना, चमड़ी का चप्पल बनाते हैं, लेदर का चप्पल बनाते हैं, जूता बनाते हैं, तो सारा दिन हाथ में किसको देखते हैं, चमड़ी को ही देखते हैं। तो ये सब चमार बैठे हैं। और अष्टावक्र ने क्या ज्ञान दिया सेकंड में जीवन मुक्ति का, कई कहानियां इस पर भी, लेकिन एक जो मशहूर कहानी है, तो परेशान हो गया राजा जनक कि कोई मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है। तो जब अष्टावक्र ने कहा मैं बताऊंगा, तो उस समय राजा घोड़े पर चढ़ रहा था, एक उसका पांव जो था वो घोड़े का सैडल होता है ना, जिस पर पांव रखते हैं, उस पर था, और दूसरा पैर धरती पर था। तो अष्टावक्र ने उनसे पूछा, अभी आप कहाँ हो, कहाँ हो। अब वो क्या बताए, क्योंकि एक पैर घोड़े पर था और एक पैर धरती पर था। तो घोड़े पर हूँ या धरती पर हूँ, दोनों पर है और दोनों पर नहीं है, पूरा तो नहीं था वो घोड़े के मतलब पांव रखने के स्थान पर, न पूरा धरती पर था, एक वहाँ एक वहाँ। तो कहा बस यही है सेकंड में जीवन मुक्ति, है और नहीं है, इसको कहते हैं और नहीं है। तो जीवन मुक्ति माना जीवन में है, लेकिन किससे मुक्त है, पापों से, दुखों से, रोगों से, सत्युगी जीवन, तो जीवन मुक्त अवस्था है। तो इसीलिए परिवार में है, गृहस्थ में है, सब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन है और नहीं है, एक सेकंड में न्यारे। फिर इसमें कहानी आती है ना कि सन्यासी भी ईर्ष्या करते थे राजा जनक से कि ये तो महलों में रहता है तो भी हमारे से ऊंचा कैसे हो गया। सन्यासी बनना माना बहुत ऊंचा बनना होता है, समझते हैं, तो कैसे हमसे ऊंचा हो गया। तो क्या पर, तो एक सन्यासी आया राजा जनक को कहा कि आप इतने ऊंचे कैसे हुए, हम सन्यासी तो और ऊंचे हैं, तो क्योंकि हमने तो सन्यास किया है सारे संसार का, और आप तो महलों में रहते हो तो आप हमारे से ऊंचे कैसे। तो राजा जनक ने क्या किया, उसको एक दिया दिया, दीपक, और कहा कि जाओ मेरे महल का अवलोकन करके आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या, कि दिया बुझे नहीं, बस मेरे महल को देख के आओ। मैं इतने सुंदर महल में रहता हूँ, एक बार देख के आओ। पर ये ध्यान जरूर रखना कि दिया बुझे नहीं। अब वो गया देखने दिए को हाथ पे लेके, अब हवा चल रही थी तो उसको ये था ना, दिया बुझना नहीं चाहिए, तो आगे तो बढ़ रहा था लेकिन ध्यान कहाँ था, दीवे पर। तो देखते 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 पहुंच गया राजा के पास वापस। तब राजा ने पूछा कि आपने महल देखा, तो कहा देखा जरूर लेकिन ध्यान दिए पर था। बस कहा यही मेरी जीवन मुक्ति की अवस्था है, महलों में रहता हूं लेकिन मेरा ध्यान महलों पर नहीं है। तो इसको कहेंगे न्यारी प्यारी जीवन मुक्त अवस्था। तो संगम युगी जीवन भी न्यारी प्यारी अवस्था है। सत्युग में तो होंगे, वहां मोह होगा। बाबा कहते सब मोह जीत राजा है। वहां मोह जीत राजा की कहानी भी बताते ना, तो एक परिवार था सब मोह जीत थे, तो उसकी परीक्षा ली गई राजा, कोई राजा बताते कोई क्या। तो जो माँ थी उसको कहा कि आपका बेटा गुजर गया, तो माँ ने कहा अच्छा, मतलब सुना और जैसे कि उनके ऊपर कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं था, बस सुना और शांत हो गए। तो कहा माँ भी ऐसे हो गई, फिर पिता के पास गया, या पहले पिता के पास फिर माँ के पास, तो सुना लेकिन शांत हो गए, कुछ कहा नहीं, वो दुख नहीं जताया, बेटा गुजर गया। फिर भाई के पास गया, हाँ तुम्हारा भाई गुजर गया। बहन के पास गया, आपका भाई गुजर गया। फिर प्रजा के पास गया, आपका हाँ ये राजकुमार गुजर गया। और सब ने सुना लेकिन कुछ भी कहा नहीं, शांत रहे, मना जैसे नष्टो मोआ थे। नहीं तो रोने लगते हैं ना, सुनते क्या ये मेरा बेटा चला गया तो रोने लगते हैं, तो शांत रहे। तो कहेंगे ये सारा परिवार मोह जीत है। तो सतयुग में क्या होगा, कैसे होंगे सब, सब मोह जीत होंगे ना। तो एक परिवार की बात नहीं है, सारी दुनिया वहां मोह जीत है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान होने कारण ये पता है कि आत्मा तो मरती नहीं है, किससे मोह रखे। कोई कहे नहीं शरीर से मोह था, पति था, बच्चा था, ये था, वो था। अच्छा शरीर से मोह है तो रख दो उसको अपने पास, तो रख सकते हैं, ये तो पांच तत्वों की चीज है, पांच तत्वों को वापस करना है। चलो आत्मा से मोह था, कोई कह नहीं उसकी आत्मा से मोह था, तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो दुख काहे का, दुख काहे का, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। और हो सकता है वो आत्मा फिर दूसरे जन्म में आपके घर में ही जन्म ले, होता है ऐसे होता है। मैं एक परिवार में गई थी, वो अनुभव सुना रहे थे, तो वो जो भाई था उसका बेटा था, तो वो कहता है कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा पिता वापस आ गया है, मेरा पिता वापस आ गया है। तो मैंने कहा क्या प्रूफ है कि आपका पिता वापस आ गया, तो वो कहता है कि छोटा बच्चा 6-7 साल का होगा, तो पिता तो गुजरे 7-8 साल हो गए होंगे। तो कहा कि मेरा जो बेटा है ना, मेरी माँ को ऐसे डांटता है जैसे मेरा पिता डांटता था अपनी वाइफ को, मतलब मेरी माँ को डांटता था, ये भी ऐसे ही डांटता है मेरी दादी को, अपनी दादी को। तो मैंने कहा अच्छा, तो बिल्कुल जैसे मेरे पिताजी करते थे। फिर मैंने कहा अच्छी बात है, फिर और क्या क्या निशानी है, कैसे हम सिद्ध करें। फिर उसने कहा कि मेरी दादी से, मतलब मेरी माँ से प्यार भी बहुत है उस बच्चे का, हाँ बस सारा दिन दादी 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 भी करता रहेगा, फिर गुस्सा भी करता रहेगा, और मेरे पिता ऐसे ही करते थे। फिर और क्या निशानी है, मेरे पिता को दवा था, तो अब मेरे बच्चे को भी दवा है, वो दवा वापस जैसे बच्चे को भी है। मैंने कहा अच्छा, इनको भी दमा है, बचपन से दमा होगा। फिर मेरे पिताजी को एक वो दाग था पीठ पर, और मेरे बच्चे को उसी स्थान पर दाग है जो मेरे पिता के पीठ पर दाग था, मेरे बच्चे को भी वही है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हो सकता है कोई कोई गलत बात तो नहीं है, वो आत्मा वापस आ गई होगी, इसमें क्या है, आ सकती है वापस, कोई हिसाब किताब तो पूरा हुआ नहीं है तो फिर दूसरा संबंध लेकर के आ गई। लेकिन आप थोड़ा सोचो, अब आपका बच्चा है परंतु आप उसको पिता कहेंगे, भले वही आत्मा वापस आई लेकिन आप उसको पिता कहेंगे तो क्या पिता कैसे कहेंगे, क्या आपकी माँ उसको पति मानेगी? नहीं। तो जब आप पिता नहीं मानेंगे, पति नहीं मानेगी आपकी माँ, तो फिर चलो आया भी लेकिन अभी संबंध बदल गया, तो संबंध बदल गया तो उसी रूप से ही आप देखेंगे। मतलब भले आत्मा वापस आई पर आत्मा मरती नहीं, ये तो पता है। तो ये ज्ञान जब बाबा से मिलता है, वो अनुभव होता है, तो हम महसूस करते रोए किसके लिए, वो आत्मा अपना जो पुण्य कमाया वो लेके गई साथ में। इसलिए जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, अपना कर्म ले गया, और बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, भाग्य लेकर आया। तो बच्चा आया मानो पूर्व जन्म का जो कर्म से संस्कार बना, वो संस्कार भाग्य के रूप में लेकर के आया। तो आया तो भाग्य लेकर और गया तो कर्म लेकर, बात तो वही है, वो कर्म ही भाग्य बन गया, तो किसके लिए रोए। इसीलिए बाबा कहते कभी भी रोना नहीं, संगम युगी ब्राह्मणों को कभी भी रोना नहीं है। माताएं, रोता आता है, जो इस साल में 7 महीना हो गया जो रोए नहीं है वो हाथ उठाए। माताएं बिल्कुल रोई नहीं है। अच्छा, बाकी सब रोई है? अच्छा, रोई है। अच्छा, और भाई जिन्होंने इन 7 महीनों में बिल्कुल गुस्सा नहीं किया है वो हाथ उठाए। अच्छा, बाकी सब ने गुस्सा किया है? हाँ, गुस्सा किया है। देखो, तो भाइयों में गुस्सा और माताओं में रोना, रोना भी एक गुस्से का ही रूप है, क्योंकि वो मुख से नहीं बोल सकती तो आंखों से निकालती है वही गुस्सा, दुख के आंसू लाती है। लेकिन बाबा कहते जिन रोया तिन खोया, क्योंकि भगवान मिला हमको और क्या चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनमें क्या हम दुखी होते हैं। छोड़ो तो छूटो, अब घर जाना है। तो इसीलिए बाबा घर का रास्ता बताते हैं, फिर बाबा कहते हैं कितने ज्ञान रत्नों से खेलो। ड्रामा का ज्ञान दिया बाबा ने, क्या नहीं दिया है ज्ञान, इतने ज्ञान रत्न दिए, उसका मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, मगन हो जाओ, लगन में रहो, तो देवता बनना है, डबल ताजधारी बनना है। बस, तो हमारा लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है इस भट्टी का, पहला पहला क्या है, ब्राह्मण तो बन गए हैं लेकिन अभी पापों को भस्म करना है, तो उसके लिए तपस्या करनी है। और मधुबन वो तपस्या का स्थान है, ज्वाला कुंड खुला हुआ है एकदम, ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं, तो एकदम अशरीरी अवस्था बन जाए। बाबा ने कहा ना, एकदम स्वाहा, हमको कोई गला काट के नहीं डालना शिव के ऊपर। काशी करवट ऐसे होता है ना, बनारस में है काशी करवट का स्थान, वो कुआं है जो काशी करवट मना मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर उसके ही बगल में है, एक कुआं है और नीचे शिवलिंग है। तो पहले जमाने में वहाँ तलवार रहती थी और सिर काटते थे, अपना सिर काट के वो शिवलिंग के ऊपर पड़ता था, काशी करवट कहते थे कि हम शिव पर बलि हो गए, तो बलि चढ़ गए। तो बाबा हमको वो बलि नहीं कहते हैं, कोई सिर काट के शिव बाबा को देना है, नहीं। कौन सी बलि देनी है, कौन सी बलि देनी है, विकारों की बलि। हाँ, शिव के मंदिर में जाते हैं या कोई भी मंदिर में जाते हैं, फल फूल मिठाइयाँ पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। अब भगवान कहेगा, ये जो कुछ भी लाते हो ये तो मैंने ही रचा है, तुम तो वो लाओ जो तुमने रचा है। वो क्या लाते हो? जो मैंने ही दिया है वही मुझे वापस कर रहे हो। फल फूल मिठाइयाँ जो भी देते हैं ये सब भी तो इस प्रकृति की चीज है, वे भगवान की दी हुई चीजें हैं, तो वो क्या मुझे देते हो? तो मुझे वो दो जो आपकी चीज है, जो आपके पास है, वो मैंने नहीं दी है। वो कौन सी चीज है जो भगवान ने नहीं दी और है हमारे पास? हाँ, ये विकार है ना, भगवान ने थोड़ी दिए है, ये भगवान ने तो नहीं दिए ना, ये किसने दिए है? हाँ, माया रावण ने दिए। तो जो माया रावण ने दिया वो हमको दो, जो मैंने दिया वही मुझे वापस कर रहे हो। क्या बड़ी बात है, तेरा ही तुझको अर्पण थोड़ी है। जो आप समझते हो ये मेरा है, मेरा समझा, पर है नहीं, वो माया का है। वो भगवान कहते स्वाहा करो, तो वो तो गला ही पहले काट लेते थे, फिर उसके बाद चलो गला खुद का नहीं काटा तो बकरे का गला काटा। हाँ, बकरा जो मैं करता रहता है। तो बाबा कहते हैं मैं की बलि दो, मैं की बलि। तो मैं की बजाय बाबा क्या कहते, क्या कहो? बाबा। मेरा की जगह बाबा को, ये बाबा का। तो मैं मेरा खत्म, मैं को ते में बदल दिया, तो ये दे अभिमान खत्म, और दे अभिमान खत्म तो सारे विकार खत्म, क्योंकि सभी विकारों की जड़ तो दे अभिमान ही है। इसीलिए कहावत भी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है, पाप की जड़ क्या है? अभिमान। अभिमान से सारे विकार झलकते हैं, और दया धर्म का मूल है। तो पाप मनुष्य आत्मा करते 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 कितने पाप आत्मा बन गए, जो बाबा नरक का मिसाल बताते हैं, सात नरक बताते हैं और सात स्वर्ग बताते हैं, सेवेंथ हेवन वो ऊंचे से ऊंचा सात। तो नरक का बाबा वर्णन करते हैं मुरलियों में, कुंभी पाक नरक, विषय वैतरणी नदी। हाँ, तीसरा कौन सा नरक का नाम है? रौरव नरक। आप ये सब नरक के अलग अलग नाम है, सात नरक ऐसे बताते। तो विषय वैतरणी नदी में कौन? विष्टा के कीड़े वो तैर रहे हैं। कुंभी पाक नरक में तो वो कुंभी क्या क्या वो बड़े बड़े जीव जंतु हैं। विषय सागर तो ये भी एक नरक का ही दूसरा नाम है। तो देखो ये सब नरक के नाम है, ये भगवान ने नहीं रचा, भगवान ने नहीं दिया, ये सब माया की देन है, रावण की देन है। अब उससे पार जाने के लिए हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है, इसीलिए उनको मारो। गीता का सार यही है ना, अर्जुन ने कहा, इन सब भगवान ने कहा अर्जुन को ये सब मारो, तो कहा कैसे मारूं, ये मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई, इनको मैं मारूं? तो भगवान ने कहा मारो माना इनको आत्मा देखो, दूसरा अध्याय पूरा आत्मा का है। मारो माना ऐसे गोली नहीं मारो, मारो माना इनको आत्मा देखो, फिर मारो माना ये पहले से ही मरे हुए पड़े हैं, इनका इनकी मौत निश्चित है, तुमको सिर्फ निमित्त बनना है, बुद्धि से न्यारा बनना है। और अगर तुम इस युद्ध में विजयी होंगे तो तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। तो प्रलोभन भी दिया, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को माँ कहेगी बेटा पढ़ो पढ़ो, तो बेटा नहीं पढ़ता है तो माँ प्रलोभन देती है, बेटा तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना तो मम्मी तुमको साइकिल दिलाएगी, तो प्रलोभन देती है। तो भगवान भी तो प्रलोभन देते हैं ना, बच्चे मानते नहीं है तो प्रलोभन बाबा को देना पड़ता है, बच्चे तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बना रहा हूं। पर अर्जुन को वो स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं पसंद, बस मारूं कैसे मारूं, क्योंकि मोह के वश था। तब कैसे माना वो अर्जुन, कैसे माना? जब उसने समझा कि ये मुझे कौन कह रहा है, पहले तो नखरे दिखा रहा था, प्रश्न कर रहा था, संशय कर रहा था, जो भगवान कहे उसका वो प्रश्न उठाता था, लेकिन जब उनको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ तब उसको महसूस हुआ ये कौन मुझे कह रहा है। तो भगवान के माँ वाक्य जो मुरलियों में सुनते हैं वो कौन हमें कह रहा है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कभी नहीं समझो ये ब्रह्मा कह रहा है, ये तो माध्यम है लेकिन शिव बाबा इनके द्वारा कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, इनको मत देखो। लेकिन बाबा को भगवान को माध्यम तो चाहिए, ये भी उनसे सुनता है। तो जैसे बाबा ये कहते हैं तो हमारा बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ चला जाता है। हाँ, फिर बाबा ने बिंदु को बिंदु बनकर बिंदु को याद करना, वह शरीरी अवस्था एकदम आत्मा परम धाम में, मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु, बाबा बिंदु के सामने हाँ वो सिंधु की शक्ति में ले रही हूँ आत्मा, ऐसा अनुभव बिल्कुल देह से न्यारी स्थिति, वो अशरीरी अवस्था ही ज्वाला स्वरूप की अवस्था है, वो अनुभव करना, फिर चलते फिरते भी करना। लेकिन जैसे आपको बताया होगा तीन मौन रखना है, कौन सा तीन मौन? एक मुख का मौन, दूसरा मन का मौन और तीसरा मोबाइल का मौन, ये मौन रखना है। तो इसीलिए वो मौन अगर तीनों है तभी हमारा ज्वालामुखी योग होगा और फिर आपको इतने खजाने मिलेंगे, इतनी क्लासेस मिलेगी। वहाँ नीचे शांतिवन में आते हैं बाबा की सीजन में, या नीचे भट्टी करते हजारों की भीड़ होती है, यहाँ तो आप थोड़े हैं, तो हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को आप नज़दीक से देख सकेंगे। और ये मेडिटेशन हॉल एकदम जैसे चार्ज एटमॉस्फेयर है, चार धामों की आप यात्रा करेंगे, हर धाम का अपना अपना महत्व है, तो वो एक एक का महत्व समझकर उसका पूरा लाभ लेंगे। फिर भोजन आपको कितना बाबा की याद का सात्विक भोजन मिल रहा है, सच्चा संग मिल रहा है, दुनिया के संग से आप दूर है, यहाँ कोई बाहर का आवाज नहीं, अब ये अनुभव करना है। हाँ, यही अनुभव हमारा सच्चा अनुभव है। देखो अभी किसी का मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल बजना शुरू हुआ, अगर सबके ट्रैफिक कंट्रोल बजने शुरू हो जाए तो क्या होगा, इसलिए वो ट्रैफिक कंट्रोल का बंद ही कर दो, यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ आपको वैसे ही जनरल में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, इसलिए किसी का भी ट्रैफिक कंट्रोल बजना नहीं चाहिए क्लास में या कहाँ भी, आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ बाबा के घर में आपको मिलेगा, अमृत वेला से लेकर रात्रि तक, इसलिए कुछ भी और सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बस तपस्या करनी है, भट्ठी माना पकना, भट्ठी माना बदलना, भट्ठी माना पूरा परिवर्तन, यहाँ से ऐसे परिवर्तित हो जाओ जो आपको वहाँ आप जाएंगे तो कहेंगे अरे वाह क्या भट्ठी की चमक गए आप, ऐसा अनुभव औरों को हो सकता है ना। हाँ, तो 3 दिन पूरा लाभ लेना एक एक क्षण का। अब पहले आपका हम परिचय लेना चाहेंगे, क्योंकि चार स्थानों से आए हैं, जो बहादुरगढ़ से आए हैं वो हाथ उठाएं, बहादुरगढ़ वाले खड़े हो जाएं, बहादुरगढ़ से जो आए हैं सभी खड़े हो जाएं, बहादुरगढ़ वाले। अच्छा, हमारे सुरेंद्र भाई, बहुत आपका ध्यान रखते हैं, आपको भट्टी में लाते हैं, नीचे भी बाबा के मिलन में आते हो, तो बात हमारे सुरेंद्र भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हो ना, आपको ले आते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। जो पीतमपुरा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, वो खड़े हो जाएं। पीतमपुर इंदौर, तो इंदौर पीतमपुर है। अच्छा, ये दिल्ली पीतमपुरा नहीं है, ये इंदौर पीतमपुर। अच्छा अच्छा, कितने आए? 10 आए हैं पीतमपुर। अच्छा, तीसरा जो गुजरात अहमदाबाद से आए हैं वो खड़े हो जाए। अच्छा, गुजरात के बहुत है, गुजरात को तो बाबा दादी कहती थी ताली बजाओ फटाफट आ जाइए। गुजरात ऐसा है, बस एक थैला लिया, दो कपड़े लिए, बस आ जाओ मधुबन। चलो बैठो बैठो। अच्छा, चौथा स्थान कौन सा है? लुधियाना। लुधियाना के खड़े हो जाए। अच्छा अच्छा, और भी कहाँ से आए हैं? बैठी बैठी, और भी कहाँ से आए हैं? अच्छा, टीचर्स बहने खड़ी हो जाए, टीचर्स बहने। अच्छा, बस 1 2 3 4 5। अच्छा, ये दो सेंटर, और आप लोग सब गुजरात से आए हैं। अच्छा, आप लोगों के कोई टीचर नहीं आई है क्या? अच्छा, तो कौन है आपका लीडर, कौन है? पीतमपुर का लीडर आप है। अच्छा, और दूसरा कौन सा? वो लुधियाना का टीचर कौन है, लुधियाना का गाइड कौन है? आप हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कौन सा बताए? बहादुरगढ़ तो है एक, तो बहादुरगढ़, पीतमपुर और लुधियाना और अहमदाबाद। तो अच्छा, टीचर्स सब अहमदाबाद से आई है, बाकी टीचर्स नहीं आई है, क्योंकि टीचर्स की भट्टी नीचे चल रही है, अब वो टीचर्स कहाँ जाएगी, या इधर जाएगी उधर जाएगी, तो नीचे भट्टी नहीं की ना आपने? अच्छा, आपकी बाद में है, तो यहाँ से जाएंगे भट्टी में जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, तो अभी ये हमारी उमा बहन है, परिचय दो उमा बहन पहले अपना।
ओम शांति। वैसे मैं उड़ीसा से हूँ, परंतु बाबा ने यहाँ मधुबन कनेक्शन में बालोत्रा करके एक जगह है, वहाँ पर बाबा ने सेवा में रखा है। लगभग 31 वर्ष हो गए बाबा की सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं करते। हम लौकिक में 3 बहनें हैं, तीनों बहनें हम बाबा की सेवा में समर्पित हैं। मम्मी पापा भी ज्ञान में चलते हैं, छोटा भाई है वो भी ज्ञान में चलता है, पर उसने शादी किया है, पर पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हैं। और विशेष करके पांडव भवन में ये कोऑर्डिनेशन का सेवा मिला, तो साथ में ये तपस्या हो जाती है, पांडव भवन के नाम से एक अलग से खुशी आ जाती है, और साथ में बड़ों का सानिध्य भी प्राप्त होता है। तो दीदी जी ने ये चांस विशेष करके कोऑर्डिनेशन का दिया है, ये भी बहुत खुशी की बात है। ओम शांति। अभी हमारे सामने मधुरवाणी ग्रुप है। मधुरवाणी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कैसा भी कार्यक्रम हो, कैसा भी माहौल हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन तुरंत 2-3 घंटे में ही ये उस अनुरूप गीत बना लेते हैं और सबका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे सामने हल्दर भाई जी हैं और निरंजन भाई जी हैं। हल्दर भाई अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मणल से गायन में विशारद किया है, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से इंस्ट्रूमेंट में विशारद हासिल किया है। म्यूजिक कंपोज करना, गीत लिखना, गीत गाना इनका बहुत शौक है। कई मोटिवेशनल डिवोशनल गीत रचना किया है और उसमें म्यूजिक कंपोज करके आवाज भी दिए हैं। सेकेंडों में गीत की रचना करते हैं। आज लगभग 2 बजे आपसे मेरी बात हुई, तब उन्होंने पूछा कौन कौन सा ग्रुप आया है और आज शाम को 7:30 बजे मधुरबाणी ग्रुप हल्दर भाई और निरंजन भाई आपके सामने हैं आपके स्वागत के लिए। हाँ, हॉस्पिटल में ओटी में सेवा करते हैं हल्दर भाई, ओटी से बाहर आए और फिर फ्री होके फिर सारा प्रोग्राम लिया। और किचन में निरंजन भाई विशेष पांडव भवन के किचन में सेवाएं देते हैं समर्पित रूप से, हॉस्पिटल के किचन में सेवाएं देते हैं समर्पित रूप से।
ओम शांति। आप लोग को ये संकल्प चल रहा होगा, सतीश भाई कहाँ है? वो कुछ भट्टी करने के लिए सेवार्थ गए हैं चेन्नई में, दीदी जैसे कहा, तो इसलिए हम दोनों भाई आए हैं आप सबका दिल से स्वागत करने के लिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि मधुबन में मोहन भट्टी करने का अवसर मिलना। आप सबको पता हो कि इस साल भट्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो किस्मत वाले आप सभी हैं, भले कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 40 आए हैं, लेकिन मौका तो मिला। जोरदार तालियां हो जाए जी। देखो बाबा अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन अपने को भी बाबा की जो आशाएं हैं, दादियों की जो आशाएं हैं, दीदियों की जो हम सब के प्रति आशाएं हैं, वो पूर्ण करनी है। तो आप सबका दिल से स्वागत करते हैं।
सबका स्वागत अभिवादन। चारों धाम की यात्रा करे कर बाबा से रूह रिहान। मैं बाबा का बाबा मेरा दिल में हुआ ठोया। चारों धाम की यात्रा करे कर बाबा से रूह रिहान। मैं बाबा का बाबा मेरा दिल में हुआ ठोया। मधुवन वाले बाबा भी कहते मधुबन वाले बाबा भी कहते ओ मेरे नूर रतन। स्वागत अभिनंदन सबका स्वागत अभिवादन। मधुबन मौन भट्टी में आकर पुलकित है तन मन। स्वागत अभिनंदन सबका स्वागत अभिवादन। मधुबन बेहद घर में आकर करनी है ऐसी तपस्या। मधुबन बेहद घर में आकर करनी है ऐसी तपस्या। पूर्ण करनी ही है अब तो भक्तों की अभिलाषा। शशि दीदी ओ शिलू दीदी दीदी ओ सिलू दीदी थैंक्स कहता दिल हरदम। उमा दीदी उमंग बढ़ाती सबका यूं हरदम। मधुबन मौन भट्टी में आकर पुलकित है तन मन। स्वागत अभिनंदन सबका स्वागत अभिवादन। एक बाबा दूजा न कोई लगी हो एक लगन। स्वागत अभिनंदन सबका स्वागत अभिवादन।